नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार तापमान के बढ़ने और भीषण गर्मी से कृषि खाद्य प्रणाली में खाद्यान्न उत्पादन और आय में कमी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मेक्सिको अंतिम 16 में पहुंचा, इक्वाडोर 2-0 से पराजित। फ्रांस ने भी स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में बना ली है जगह। और 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी।
ईरान के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। भारत के साथ संबंध और सशक्त बनाने की ईरान की प्रतिबद्धता दोहराते हुए राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने कहा कि दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक विरासत और परस्पर आदर सम्मान पर आधारित हैं। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वित्तीय सेवा, वित्तीय प्रौद्योगिकी, डिजिटल भुगतान और उभरती प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ाकर भारत और ग्रीस के बीच आर्थिक संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ग्रीस के आर्थिक और वित्त मंत्री किरियाकोस पियरकाकिस के साथ मुलाकात में दोनों पक्षों ने साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत और ग्रीस के संस्थानों के बीच गहरे सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल ने ग्रीस के अवसंरचना और परिवहन मंत्री क्रिस्टोस डिमास के साथ भी मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने अवसंरचना, परिवहन संपर्क, समुद्री क्षेत्र, विमानन और सतत मोबिलिटी में भारत ग्रीस के बीच बढ़ते सहयोग पर चर्चा की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कल संयुक्त रूप से भीषण गर्मी और कृषि नाम से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ता तापमान और भीषण गर्मी कृषि खाद्य प्रणालियों में खाद्यान्न उत्पादन और आय को कम कर रही है। इस प्रणाली पर 1 अरब 23 करोड़ लोग निर्भर हैं। साथ ही इसमें यह भी चेतावनी दी गई है कि जब गर्मी के साथ साथ सूखा जैसी अन्य आपदाएं जुड़ जाती हैं तो कृषि उपज का नुकसान 3 गुना तक बढ़ जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भीषण गर्मी कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे के रूप में उभर रही है। वेनेजुएला में भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,943 हो गई है। लगभग 10,571 लोग इस त्रासदी में घायल हुए हैं। वेनेजुएला सरकार ने कहा है कि भूकंप के बाद पहले 2 दिन में 5,380 लोगों को बचाया गया, लेकिन सोमवार को अधिकारियों को केवल 4 लोग ही जीवित मिले। आपदाग्रस्त लोगों की सहायता के लिए 25,000 से अधिक दमकलकर्मी, बचावकर्मी, पुलिस अधिकारी और सैन्यकर्मी लगे हैं। दक्षिण अमरीका के वेनेजुएला में 25 जून को भूकंप के 2 तेज झटके आए थे और इन झटकों के बाद काराकास में कई इमारतें गिर गईं, जिनका असर वेनेजुएला की आबादी के एक बड़े हिस्से पर पड़ा है। अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमरीका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमरीकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ट्रंप बनाम बारबरा मामले में न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह आदेश अमरीकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है। नेपाल में बर्ड फ्लू के प्रकोप के बाद कावरे पानलचोक में 40,000 से ज्यादा बत्तखों और मुर्गियों को मार दिया गया है। इस संक्रामक एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रसार रोकने के प्रयास तेज हो गए हैं। धुलीखेल स्थित जिला पशुधन कार्यालय ने व्यावसायिक फार्मों में 40,000 से ज्यादा पक्षियों को मारे जाने की सूचना दी है। ये प्रकोप अब वहां 11 से अधिक जिलों में फैल गया है। रोकथाम के प्रयास के बीच पशुधन अधिकारी मुर्गी पालकों और आम लोगों से सतर्कता बरतने का आग्रह कर रहे हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति हुसैन अली मुइने ने कल तंजानिया में भारतीय उच्चायुक्त विश्वदीप डे के साथ भेंट में जंजीबार के विकास में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। तंजानिया के राष्ट्रपति ने जंजीबार में स्टेट हाउस में उच्चायुक्त विश्वदीप डे का स्वागत किया। उन्होंने विशेषकर निवेश, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की अहम भूमिका की सराहना भी की। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
सबसे पहले बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल विश्व कप में मेक्सिको इक्वाडोर को हराकर अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। अब रविवार को नॉर्वे का मुकाबला ब्राजील से होगा। उधर मोरक्को, पैराग्वे और कनाडा भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। उधर क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे स्टर्ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। वहीं महिला टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गया है। लंदन के ओवल में कल पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से पराजित किया। रविवार को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। कल ओवल में दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। हॉकी की बात करें तो भारत ने बेल्जियम दौरे के लिए 21 वर्ष से कम उम्र की पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। ये मुकाबले 5 से 18 जुलाई तक खेले जाएंगे। ये दौरा इस वर्ष के आखिर में होने वाले FIH जूनियर एशिया कप हॉकी से पहले तैयारियों का अहम चरण होगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।